देवियों सज्जनों, आज सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का मतलब दीप मतलब दिया, लैंप्स, आवली उसकी रो है, जो ग्रुप है, जो लाइन्स हैं, तो उसको दीपावली। दीपावली कब मनाते हैं? जो साल की सबसे ज्यादा अंधेरी रात होती है, कार्तिक मास की अमावस्या की रात है। देखिए, तभी तो किसी चीज की जो वैल्यू है तो तभी होती है जब आप, जब एक्चुअली उसकी जरूरत है तब आप उसको यूज करते हैं। अब दिन में लाइट जलाएं तो लाइट की कोई वैल्यू थोड़ी होती है। लाइट होने का क्या फायदा उसको पूछो जो सालों से इलेक्ट्रिसिटी लाइफ में देखा नहीं हो। जब हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई, हम छोटे थे, फिफ्थ सिक्स्थ में पढ़ते थे, बस आई, चौराहे पर एक बल्ब, 100 पावर का बल्ब जला तो शायद एक हफ्ते तक गांव में जश्न हुआ। उसको पता है 100 पावर बल्ब का क्या वैल्यू है, जो पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताया हो। तो दीपावली भी तभी सेलिब्रेट की जाती ना, पूर्णिमा में दीपावली मनाओ कोई मतलब नहीं होता है। चांद तो वैसे ही चमकीला है पूर्णिमा के रात को, दियों का क्या महत्व है। खाने का क्या स्वाद है, यह आप लोगों को बड़ा मुश्किल होता है, स्वाद आता ही नहीं है, अब क्या करें। कितना बढ़िया घर में बनाए, जमा नहीं, और अच्छा होना चाहिए था। रेस्टोरेंट में भी जाता है, मजा नहीं आता है, क्यों? अब अच्छा खा करके उससे बेटर अच्छा, उससे बेटर तक कहां से मिलेगा, पूछो। जो दिन में एक बार, इवन आपके ह्यूस्टन में भी है, अमेरिका तो दुनिया के सुपर पावर है, यहां भी गरीबी है, उनको पूछो, बस खाली थोड़ा बहुत साग सब्जी पकड़ा दो, ब्रेड पकड़ा दो, तो भी ऐसा लगता है जैसे दिवाली मन गई उनकी। जो दिन दिन भर नहीं खाते हैं, खाना नहीं मिलता, वो जो भी मिलता है, सूखी रोटी हो, बासी रोटी हो, टुकड़ा सा हो, आधा सा हो, वो सेलिब्रेशन होता है। दीपावली उस अंधेरे में प्रकाश का प्रतीक है। जिस चीज में हमारी कमी है उस कमी को भरने की त्योहार है। जब सब अच्छे हो तो फिर अच्छे आदमी का बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं होता है, क्योंकि सब अच्छे हैं, कौन किसको रेस्पेक्ट करेगा। अब जैसे भारत में मतलब कोई ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता है, बड़ी बात होती है, उसको ऑनेस्ट मानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है रिश्वत नहीं लिया, हर आदमी को नहीं लेना चाहिए। पर प्रॉब्लम है कि जब करप्शन इतना हो, अगर 100 में से 90 ऑफिसर बेईमान हो तो 10 ऑफिसर जब ईमानदार होते हैं लगता है जैसे स्वर्ग आ गया, भगवान आ गए। अब यहां ऐसे थोड़े ही करते हो कि कोई ऑफिसर ईमानदार है, पुलिस ऑफिसर ईमानदार है, आप कहते हो बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है, मोस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑनेस्ट हियर। हर चीज की जो वैल्यू है वो तब ज्यादा दिखता है जब उसकी जरूरत होती है, जब उसका अभाव होता है। तो दीपावली अंधेरे में प्रकाश की पर्व है, खाली प्रकाश का पर्व नहीं है, इट्स नॉट ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट्स ए फेस्टिवल ऑफ लाइट इन डार्कनेस। जब चारों तरफ से व्यक्ति डिप्रेशन में हो, लगे सब बुरा हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अब जीने को मन नहीं कर रहा है, बहुत कुछ है, मेरे साथ बुरा घट रहा है, भगवान भी अन्याय कर रहा है, सब अन्याय कर रहे हैं, बीमारी है, वो है, जब कहीं से कोई कॉन्सोल करने वाला आ जाता है। हॉस्पिटल में बीमार पड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों का कोई नहीं आता है। डॉक्टर कहते हैं इनकी बीमारी ज्यादा लंबी खींच रही है, इसीलिए नहीं कि बीमारी कोई खतरनाक है, इसीलिए कि वो अंदर से इतना टूटा हुआ है, उसको अब ठीक होने को मन ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं पूछता है। अगर कोई व्यक्ति घूमते फिरते वहां पहुंच जाए, हालचाल पूछ ले, सर पे जरा हाथ फेर ले, जान पहचान का हो, उस दिन उसकी दिवाली मन जाती है। पर हमारे भी अपनी मजबूरी है, हम उस लोग के उस आदमी के पास तो हजारों लोगों में इकट्ठा हो जाते हैं अगर हॉस्पिटल में बीमार पड़ जाए, जिसके पास ऑलरेडी हजारों लोग जाते हैं वहीं हम भी जाना चाहते हैं, पर वहां नहीं जाते ना जहां जिसकी जरूरत है। और होता क्या है, अब दुखी होकर आते हैं जब किसी को मिलने जाते हैं, क्यों, आपको कोई पूछता नहीं है, आपकी आप इतने दूर से ड्राइव करके आए, ऑफिस से छुट्टी लेकर आए, कोई बीमार है उसे मिलने आए। अब लोग बीमार पड़ते हैं यहां तो फोन ऑफ रखते हैं, क्यों, इतने फोन करते हैं, इतने करते हैं यही पूछने के लिए कि कैसे हैं, ठीक हो जाइए जल्दी। इतने लोग फोन करते हैं कि वो तंग हो जाते हैं। हम कोई बुरी बात थोड़ी कर रहे हैं, मिलना ही तो चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, पूछना चाहते हैं, पर बीमार आदमी कितने लोगों से बात करेगा, उसके घर वाले कितने लोगों से मिलेंगे, इसीलिए अवॉइड करते हैं। पर हजारों लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, क्यों, कोई पूछने वाला नहीं है, गलती से भी आते जाते कोई हाय हेलो करने वाला नहीं है, उनको दिवाली की बड़ी जरूरत है। तब डार्कनेस में लाइट चलता है, उसको दिवाली कहते हैं। जिसके पास नहीं है उसको थोड़ा सा भी मिल जाए। दिवाली में आप क्या करते हैं, सूरज थोड़े ही लाते हैं, चांद थोड़े ही लाते हैं, अब हैलोजन लाइट लगा के दिवाली मनाएंगे, वो दिवाली नहीं है, दिया जलानी होगी ना, उसका महत्व है दिया का, हैलोजन लाइट का नहीं है दिवाली के दिन, क्योंकि वो दिया रिप्रेजेंट करता है सूरज को रात में, अंधेरी रात में। सूरज तो ऑलरेडी प्रकाश दिन में देता है, पूर्णिमा में चांद देती है, दियों का कोई कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है। उस दिन दिया सूरज का काम करता है, आज की रात जो सूरज दिन में करता है, ये अमावस्या की रात दिया काम करता है, दिया जलाने की है। आप छोटा सा भी कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी के लाइफ में, कोई जरूरत में है, कोई चाहता है कि मुझे कोई मिल ले, कोई चाहता है कि मेरे पास मुझे कोई पैसे का हेल्प कर दे, कोई चाहता है कि मुझे बस कोई प्यार से दो बातें बता दें, कोई चाहता है कि सिर्फ मेरी बातें सुन ले, कुछ करना नहीं है ना, मुझे एडवाइस देने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बैठ जाए आधा घंटा एक घंटा में कुछ बोल डालूं जो मैं अपने बच्चों को नहीं बोल पाता हूं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, मैं अपने स्पाउस को नहीं बोल पाता हूं किसी कारण से, कोई मेरे से सुनने को तैयार नहीं है, खाना खिला देते हैं, सुला देते हैं, चले जाते हैं, एक आदमी चाहिए जो बस बैठ जाए, बस मैं कुछ बोलता जाऊं, हो सकता है आपके लिए अटपटांग लगे कि क्या अटपटांग बोलता है, पर मेरे साल भर की वो भड़ास है, मैं निकालना चाहता हूं, बस सुन ले, उपदेश ना दे, उतने में ही उनकी दिवाली हो जाती है। वो दिवाली पता है 6-6 महीने तक वो उसको याद रखते हैं, उस खुशी को, किस खुशी को, कि आपने सुन लिया उनकी बात, आपने उनकी बातें बस सुन ली एक घंटे तक बैठ के, और कुछ नहीं किया। उन बुजुर्गों को पूछिए जो बताना बहुत कुछ चाहते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, है ना, उनकी दिवाली तब होती है जब कोई बैठ जाए पास में, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, 2-3 बार खरोंच दें और वो अपनी भड़ास निकाल लें। कितनी शांति मिलती है अगर डॉक्टर जाकर चेक करे, उनको पता चलेगा एक घंटे बोलने के बाद उनके आधी बीमारी ठीक होती है। देवियों सज्जनों, दिवाली सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट नहीं है, फेस्टिवल ऑफ लाइट इन डार्कनेस। अब साल भर कभी भी कर सकते हैं, किसी को कोई चीज जरूरत है, उस जरूरत के समय अगर आप वही चीज कर देते हैं, आप उसकी लाइफ में दिवाली ले आते हैं। वो कार्तिक मास की अमावस्या हो, या माघ मास हो, या वसंत ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, कुछ भी हो, दिवाली आप रोज ला सकते हैं। सो इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ ब्राइटनेस ओवर डार्कनेस। जब घना अंधेरा हो, छोटी सी भी लाइट रोशनी देती है आगे बढ़ने के लिए। सो द फेस्टिवल इज हेल्ड ऑन अमावस्या, द मून इज लाइट इन द डार्क हाफ ऑफ द कार्तिक मास। देवियों सज्जनों, मन में जरूर बनाइए, अपने जान पहचान, मित्र दोस्त फैमिली मेंबर, उन सबका आप ख्याल रखते हैं, वो सुख में दुख में, उनकी शादी में, ब्याह में, मौत में, बीमारी में, हर जगह आप ख्याल रखते हैं, ख्याल रखना चाहते हैं, वो जरूरी है, वो अच्छी बात है। पर वो दिन में ही, जैसे अभी हम लाइट जला रखें, रोशनी है तो भी लाइट जला रखें, अच्छा लाइट होता है, अच्छा लगता है, सुकून फील करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर कभी लाइफ में ये भी असूल बनाइए, ये भी रूल बनाइए कि जितना हो सके मैं अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा वहां भी दूं जिनको सचमुच जरूरत है, हमारी उपस्थिति का, हमारी प्रेजेंट की। हो सकता है हमारी धन की जरूरत हो, हमारे ज्ञान की जरूरत हो, हमारे फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत हो, बस वहां खड़े होने की जरूरत हो, कुछ सुनने की जरूरत हो, कुछ बोलने की जरूरत हो, कभी पैसे की जरूरत हो, कुछ खाने की जरूरत हो। लाइफ में ये असूल जरूर हम बनाएं कि जहां जैसा हो सके हम करें, उसको करके बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किसके लिए किया, अपने लिए। ऐसा नहीं कि जब आप दूसरे की जिंदगी में दिवाली लाते हैं, आपकी जिंदगी का, आप अगर इसको किसी को शेयर नहीं करते हैं तो आप अंधेरे में होते, नहीं, आपको भी बड़ी अजीब सी सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो सचमुच कुछ काम का है, कोई यूजफुल है। बाकी तो पूरी लाइफ हम जीने के लिए जीते, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती कर ले, क्यों जीने के लिए, उस जीने का कोई यूज हो तो उस दिन हमें भी बड़ा मजा आता है, जब हम दूसरे के मजे में साथ देते हैं, सुख में दुख में साथ देते हैं। हिस्टोरिकली जो दिवाली है, अगर आप इसकी हिस्ट्री पता करें तो बहुत पुराना जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो आजकल आप बताते हैं बस सुनते हैं कि राम अयोध्या वापस आ गए इसीलिए दिवाली हुई, विष्णु लक्ष्मी से शादी कर ली इसीलिए दिवाली हुई। और राम भी दिवाली मनाते थे जी, राम के समय में भी दिवाली था, ये नहीं कि राम वापस आए तभी दिवाली शुरू हुई। दिवाली होली हमारे हजार हजार सालों का त्योहार है, राम कृष्ण से पहले के भी त्योहार हैं, वो भी मनाते थे, वो भी पढ़ते थे, वो भी श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन मनाते थे, उनसे नहीं शुरू हुआ है। हो सकता है कोइंसिडेंटली उसी दिन राम आए हो, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, वो तो किंवदंती है, हियर सेइंग है, इसका कोई रामायण में या और कहीं ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है, वो अलग बात है। वो कहता है नरकासुर का वध हुआ इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, साउथ इंडिया में करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में ये सब चीजें चलती है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। हमारे यहां भारत में दो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, एक स्प्रिंग में और एक ऑटम में। जो गर्मी में लगाया था अभी उसकी कटाई होती है, धान गेहूं अनाज वगैरह की। इसको ऑटम हार्वेस्टिंग कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए शब्द होता है शारदीय नवशस्येष्टि। शरद कहते हैं ऑटम, नवशस्य न्यू हार्वेस्ट, इष्टि मतलब यज्ञ। वसंत में आप मनाते हो, स्प्रिंग में उसको आप होली कहते हो, यज्ञ खत्म होता गया, उसकी जगह वो होली में वो जलाते हैं लकड़ी वगैरह, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, नॉर्थ इंडिया में बोल जलाते हैं। और आजकल दिवाली में वो पटाखे फोड़ते हैं और बाकी वो करते हैं। नए फसल घर में आता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, काम किया उसका कुछ परिणाम मिला उसको सेलिब्रेट करते हैं। हर चीज में स्पिरिचुअलिटी मत ढूंढिएगा, लाइफ केवल स्पिरिचुअल नहीं है, बॉडी भी है, दोनों को रेस्पेक्ट करिए। विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयम् सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतम् अश्नुते। यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद में आता है। विद्या और अविद्या, अविद्या मैटेरियल चीजें, शरीर से रिलेटेड चीजें जो शरीर को सुख देता है, अविद्या विद्या आत्मा से संबंधित चीजें जो आत्मा को सुख देता है। दोनों की जरूरत पड़ती है। जो एक इनमें से एक को छोड़ता है वो नरक में जाता है, वो अंधेरे में गिरता है, मतलब दुखी होता है, उसके लाइफ में कभी कोई एक्चुअल सुख मिलेगा ही नहीं जो इनमें से एक को छोड़ता है। यजुर्वेद बोलता है, ईशावास्य उपनिषद कहता है। क्यों, इसकी लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है? क्योंकि तुम ना आत्मा हो ना तुम शरीर हो, तुम तो दो चीजों का मिलावट हो, तो शरीर भी है आत्मा भी है, किसी एक को लेकर मत चलो, फंसोगे, दोनों को रखो। शरीर का भी आनंद है, आत्मा का भी आनंद है, दोनों को लेकर चलेंगे ज्यादा सुख मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे भारत में जितने फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल को संस्कृत में बोलते हैं पर्व, अपनी बाकी भाषाओं में भी पर्व ही बोलते हैं। और दूसरा शब्द होता है उत्सव। पर्व का मतलब होता है जॉइंट, जैसे आप बैम्बो ट्री देखते हैं या गन्ने की सुगर केन की ट्री देखते हैं या कोई देखते हैं, तो उसके बीच बीच में जॉइंट होता है, उसको संस्कृत में पर्व बोलते हैं। जो गन्ने की या बांस की जो जो जॉइंट पोजिशन है उसको संस्कृत में पर्व बोलते हैं। अब आप समझिए, साल भर शास्त्र कहता है कुर्वन निवेह कर्माणि जिजिविषेच्छतम समा, हर व्यक्ति को काम करते हुए ज्यादा देर तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर 100 साल तक जिंदा रहने की इच्छा करते हो, काम करते हुए जिंदा रहने की कोशिश करो, करते रहो, एक्टिव लाइफ जियो, इनएक्टिव लाइफ नहीं। सब कुछ है तो भी काम करो, भी काम करेगा व्यक्ति को रिलैक्सेशन चाहिए। देखिए दुनिया में जो बुद्धिजीवी लोग हैं मूर्ख थोड़े ही हैं, जो जितना एडवांस्ड कंट्री है वहां उतने दिन की ज्यादा छुट्टियां मिलती है, यहां 5 दिन काम करो 2-2 दिन छुट्टियां। भारत में पहले आज से 15-20 साल पहले, आज भी बहुत सारे राज्यों में है, 1 दिन छुट्टी 6 दिन काम करो, और आपको पता है 6 दिन काम करने वाले लोग क्या काम करते हैं? 6 दिन में अगर 8 घंटे के हिसाब से 848 घंटा होता है तो 48 मिनट भी काम कर ले तो भी बड़ी बात है। सरकार कहेगी नहीं, 6 घंटे 6 दिन काम करो 8-8 घंटे। जब जो सोसाइटी सरकार नेचर को नहीं समझ सकता, ह्यूमन माइंड को नहीं समझ सकता, कोई व्यक्ति वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। खोखले आइडियल से दुनिया नहीं चलती है। जब तक आप ये समझते नहीं हो, अंटिल यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो कैसे फंक्शन करता है, इवन हम खुद भी नहीं जानते हमारी बॉडी हमारा मन कैसे फंक्शन करता है। हम कभी कभी इधर उधर अच्छी चीजें बुरी चीजें सुन के इन्फ्लुएंस्ड होकर के अपने आप को उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं इट्स माई नेचर। और हमारे शास्त्र बहुत वार्निंग देते हैं, ये तो मिथ्याचार है। कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियों से कुछ नहीं करते हो इसका अर्थ नहीं कि तुम योगी बन गए,
तुमने छोड़ दिया खाना पीना नाचना गाना, जो भी भोग विलास छोड़ दिया और तुम समझते हो तुम योगी बन गए। कृष्ण बड़ा कटु शब्द यूज करते हैं, बोले तो मिथ्याचार करते हो, पाखंड करते हो, हिपोक्रेसी है। क्यों? कि तुम्हारे मन में चलता रहता है। फिजिकली छोड़ देने से व्यक्ति हिपोक्रेट के अलावा कुछ नहीं होता है, अंटिल उसके माइंड में कोई चेंज आ जाए, उसे मन में कोई बदलाव आ जाए। अगर मन और शरीर दोनों से आप कुछ कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो वो जेन्युइन होगा। इसीलिए हमारे सारे फेस्टिवल आप काम करो। अब जब आदमी ईमानदारी से काम करे फिर उसको रिलैक्स चाहिए, मन को तो चाहिए। फिजिकली आप थकते नहीं थकते, पर मेंटली आप थक जाते। इसीलिए पर्वों की व्यवस्था हुई, छुट्टी करें। आपको पता है पर्व का दूसरा नाम क्या है? उत्सव। अंग्रेजी में आप फेस्टिवल कहते हैं। क्या मतलब है उसका हिंदी में? उत्सव का मस्ती करना, जॉय करना। आजकल लोग डरते हैं, मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं कैसे एंजॉय करूंगा? तो उत्सव का मीनिंग यही है। आपको पता है दुनिया का सबसे पहला जो आर्ट के शास्त्र हैं, जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक, गाना, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इन सब पर जो पहला शास्त्र है वो सामवेद है, जो सोर्स है, पहला सोर्स। और जो पहला 100% डेडिकेटेड टेक्स्ट है वो भरतनाट्य शास्त्र है, जो 3,500 साल पहले का लिखा हुआ, और जो कम से कम 1,000-1,500 पेज का है। और पता है वो नाट्य शास्त्र मतलब नाटक से संबंध, नाटक प्राचीन काल में नाटक का मतलब होता है डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सब कुछ का कॉम्बिनेशन, एक्टिंग, सब कुछ। शायद दुनिया में ऐसा बहुत कम देश होंगे जहां उनके एंशिएंट कल्चर में सैकड़ों बुक्स लिखे गए सिर्फ डांस के ऊपर, सिर्फ संगीत के ऊपर, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। और पता है ये सब कहां लिखे जाते थे और कहां होते थे? इनका परफॉर्मेंस कहां होता था? धार्मिक स्थलों में शुरू हुआ। प्राचीन काल में यज्ञ होता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, महीनों चलते थे, हफ्तों चलते थे। आजकल हफ्तों का त्योहार है, अब मंदिर जाते हैं, पहले लोग हवन करते थे, बड़े बड़े यज्ञ, दिन भर यज्ञ चलता था, रात को ये मनोरंजन होता था, नाटक का, संगीत का, नाचने का, ये सब। वो हमारे धर्म के पार्ट थे, वो कोई सोसाइटी से बाहर नहीं था। अगर धर्म पार्ट ऑफ सोसाइटी है, एंटरटेनिंग भी पार्ट ऑफ सोसाइटी था, यह आपके शरीर की डिमांड थी, मन का डिमांड है। तो इसीलिए वेदों में, चार वेदों में एक सामवेद उपासना का वेद है, पर उसका जो मैटर है वो संगीत है। उत्सव मतलब मस्ती कर। अब मस्ती का आजकल अगर आप अर्थ ले रहे हैं कि भाई मस्ती का मतलब कहीं जाओ, दारू पियो और जुआ खेलो, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना। मतलब वो आप मस्ती को कैसे डिफाइन करते हो, या आप पर डिपेंड करता है। आप देखेंगे सभी कल्चर में, हमारे देश के हर राज्यों में जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, इवन मंदिरों में भी जो होते हैं, सबसे ज्यादा गाना कहां गाई जाती है नॉर्मल इंडियन सोसाइटी में? मंदिरों में भजन गाते हैं ना। भजन क्या है? संगीत। रोज गाते हैं। आप घर में भी जब भी कोई प्रार्थना करते हैं कैसे गाते हैं? गाकर बोलते बोलते अपने। और व्यक्ति सेलिब्रेट करता है लाइफ को, हर छोटी छोटी चीजों को। जब किसान को फसल मिल जाए तो भी सेलिब्रेट करता है, जब योगी को परमात्मा मिल जाए तो भी सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट का वे ऑफ सेलिब्रेशन अलग अलग होगा, पर दोनों जगह उत्सव है। योगी को जो परमात्मा का अनुभव होता है वो भी उत्सव होता है उसके लिए। किसान के जो फसल मिलता है वो भी उसके लिए उत्सव है। मजदूर जब काम 8 घंटे काम करके शाम को उसको मजदूरी मिलता है, तो आपको महीने का तनख्वाह मिलता है, बड़े आदमी है, बड़े पैसे वाले। जो मजदूर रोज काम करके पैसा लेता है, वो शाम को जब वो पैसा लेकर 50 रुपए 80 रुपए भारत में लेता है, 100-200 आज के, या यहाँ वो $30-$50 जो भी लेकर जाता है स्टोर से, अपने चावल दाल आटा जो भी लेकर घर में खाना बना के खा करके सोता है, वो उसका उत्सव होता है। दीपावली उस शारदीय नवसश्रेष्ठ का उत्सव है, जहां किसान खेत से फसल आता है। और उस उत्सव को मनाने की हमारी तरीका की थी, क्या थी, हर चीज में इष्टि जुड़ा होता था। इष्टि का मतलब यज्ञ है। अब यज्ञ तो नहीं रहा लोगों के पास, और वो क्या करते हैं, आग तो हर जगह जलाते हैं ना। दिवाली में भी आप घर में पंडित जी बुला के हवन कराते हैं। वो आजकल का हवन अलग होता है कि लक्ष्मी को बुलाने के लिए पैसा कितना आएगा, मतलब पैसा आता नहीं है तो शायद वो किसान को वो प्राचीन काल में वो चिंता दिवाली को लक्ष्मी बुलाने के लिए नहीं होती थी। लक्ष्मी आ गई, जितना आई मैं खुश हूं, उसको सेलिब्रेट करते थे, भगवान को थैंक यू करते थे। अब तो घर में भरा पड़ा है तो भी लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जरा और दे जाओ। पंडित भड़काते हैं, लोग भड़क जाते हैं। पंडित कहते हैं कि लक्ष्मी को पूजोगे और सोना बरसेगा, ऑलरेडी तो मेरे पास बहुत है ना, और बरसेगा। जैसे ये मल्टी कंपनी लोग आपको भड़काते हैं आकर के, ये लो तो ये इंश्योरेंस ले तो ये हो जाएगा, वो कंपनी लो तो वो हो जाएगा। बहुत लोग मानते नहीं है, उल्लू तो हमेशा हर जगह उल्लू बन ही जाते नहीं। ये तो ये होली दिवाली थैंक्स गिविंग था हमारा, घर में कुछ आया हवन के द्वारा ईश्वर को हमने अर्पित किया, पहला दाना खाने का पहला चीज ईश्वर को जाता है। आज भी भारत में ट्रेडिशन है, रूरल एरिया में तो जरूर है कि घर में कोई पहली चीज आए तो पहले पड़ोसी में दे आओ, आसपास का जो बड़ा आदमी है बुजुर्ग आदमी है उसको दे आओ। खेत में कुछ पहला फसल आया तो पहले पूजा करो, ईश्वर को समर्पित करो, दूसरों में बांटो, फिर हम घर में खाएंगे। आप लोग भी करते हैं, बैकयार्ड में फसल होता है तो लोग एक दूसरे को बांटते हैं। ये है नवसश्रेष्ठ, पहला फसल आया इसको समर्पित करना, ये थैंक्स गिविंग था हमारा। होली हो, दिवाली हो, दीपावली ऑटम हार्वेस्टिंग का थैंक्स गिविंग है ईश्वर के प्रति था। आज और एक बड़ा दिन है देवियों सज्जनों, जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो नहीं भी हैं वो नहीं जानते इसीलिए उनके लिए नहीं, जानेंगे तो उनके लिए भी होगा। वो है स्वामी दयानंद जी, आज के दिन उनका देहांत हुआ था। और संयोग है कि 2016 का जो दिवाली है वो अक्टूबर 30 को पड़ता है, तो स्वामी जी का जब देहांत हुआ था 1883 में, शायद उस दिन भी दिवाली थी और डेट भी 30 अक्टूबर था। स्वामी जी कोई आम जो नॉर्मल साधु सन्यासी होते हैं वैसे नहीं थे कि भाई लोगों को सीधा स्वर्ग भेजना है, कथाएं करनी है, प्रवचन करना है, मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवान को कैसे पाएंगे, यही बोल बोल के भक्त बनाने का, ऐसा कोई साधु नहीं थे वो, बिल्कुल नहीं थे। ऐसा कोई धार्मिक नेता वो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सत्संग का माहौल बिल्कुल मिठास से भरा हो, लोग घर से टेंशन लेकर आते हैं यहाँ हल्का होकर जाएं, एंटरटेनिंग का माध्यम जैसे आजकल सत्संग बनता जा रहा है, लोग एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं थे वो। थे लोगों को उनकी सच्ची चीजें बताने के लिए। उन्होंने कभी केयर नहीं किया कि सामने वाला उनको रिस्पेक्ट करता है, मानता है, नहीं मानता, ये बोलता है कि आपने अच्छा बोला या बुरा बोला, आपने अच्छा एंटरटेन किया या नहीं किया, ही डिडंट केयर इट अबाउट इट। इसका परिणाम क्या हुआ? 18 बार उन पर आक्रमण हुआ मारने के लिए, जहर दे के, पागल हाथी छोड़ के, पीछे से चूरा घोंप के, डंडों से, पहलवान भेज के 18 बार मारने की कोशिश की गई। उनका पॉलिसी सीधी सी थी, धर्म वो नहीं है जो मंदिर में ही होता है, धर्म तुम्हारा आचरण हो। और ऐसा नहीं कि वो कोई खुद बता, वो हमेशा बोलते रहते थे मेरा कोई अपना विचार नहीं है, कोई अपना रिलीजियन बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई सेक्ट बनाने का है, जो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारे वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में, धर्म शास्त्र में, महाभारत में, राम, जिनको भी तुम मानते हो, वहां जो लिखा है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो बाकी लोग बताने में डरते हैं तुम्हें। धर्म वो नहीं कि तुम कितना पूजा पाठ करते हो, कितना जप तप करते हो, धर्म वो है कि तुम्हारा विचार कितना अच्छा है, तुम्हारा आचरण कैसा है। तुम अगर बुरा आचरण वाला व्यक्ति हो, गंदा काम करते हो, डिसऑनेस्ट हो, कितना भी पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, सत्संग करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, तुम्हारा पाप कोई नहीं ले सकता, कोई बाबा आचार्य स्वामी सन्यासी पैस्टर तुम्हें कोई नहीं स्वर्ग भेज सकता, ये तुम्हारा पाप कर्म तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये जो डेयरिंग स्टेटमेंट है ये सन्यासी को ही बोलना चाहिए था, पर सन्यासी लोग भी आम आदमी से ज्यादा कंप्रोमाइज्ड नेचर वाले हो चुके हैं। स्वामी जी, एक सन्यासी का जो लक्षण है क्या? अनकंप्रोमाइज्ड नेचर। दूसरे क्या बोलते मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सन्यासी हूं, मुझे दूसरों से क्या मतलब है, कोई मुझे प्यार करता है, नफरत करता है, समाज कैसा है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, गाली देता है, तारीफ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, फिर सन्यासी लेने की जरूरत ही क्या है। मेरा काम है सच्चे ईश्वर की बात करना, सच्चे धर्म की बात करना, लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना है। जो बाकी सन्यासियों ने, साधुओं ने करना छोड़ दिया था, आज भी छोड़ रखे हैं, मीठा बोलना और आर्टिकुलेटेड मीठा बोलना, उसको कल्टीवेट करके, ऐसा नहीं कि ये उनका नेचर है, ऐसा ट्रेंड होकर के, जैसे मार्केटिंग लोग करते हैं। स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं थे, और उसका परिणाम हुआ कि भारतवर्ष में लोग उनको पसंद करते थे, नहीं करते थे, थोड़ा करते थे, ज्यादा करते थे, अलग बात है, पर इनडायरेक्टली इंडियन सोसाइटी में चेंज आया। जो लोग विरोध करते थे फ्रंट में, दो साल बाद, पांच साल के बाद, उनको भी लगा समथिंग इज रॉन्ग इन आवर बिहेवियर। महिलाओं के प्रति जो हमारा व्यवहार था बदला, शूद्रों के प्रति जो हमारा व्यवहार था बदल रहा है, ईश्वर के प्रति जो हमारा व्यवहार है बदल रहा है। अब लोग सवाल पूछते हैं, कौन है ईश्वर, वो कैसा है, क्या वो ईश्वर है जिसको हम पूछते हैं, अलग अलग मिथिकल डाइटीज को ईश्वर मान के जो पूछते हैं, क्या वो रियल है, गणेश है, हनुमान है, अमुक है, समुक है, जो भी जिस रूप में भी आप पूछते हैं, लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी आने लगा है, आंसर बहुत कम मिल पाता है। पर ये जो क्यूरियोसिटी आना अपने आप में बड़ी बात है, हमारे समाज को बदलने के लिए, हमारे धर्म को और प्यूरिफाइड बनाने के लिए, वापस हमारे असली शास्त्रों की ओर जाने के लिए। और मेरी आशा है जैसे जैसे इंडियन लोग पढ़े लिखे बढ़ेंगे, हमारी अगली जनरेशन बढ़ती जाएगी, जितना समाज का सोकल ट्रेडिशनल ताना बाना टूटेगा, सोकल कल्चर में दरार पड़ेगी, हमारा देश इतना अच्छा बनता जाएगा, वो वापस हमारे शास्त्रों की ओर जाने लगेंगे, उतना अच्छा इंसान बनने लगेंगे। और ये सोकल कल्चर को गिरना चाहिए जो ट्रेडिशन के नाम पर हर वो अनह्यूमन अमानुषीय बातें आपको सिखाता है, करने के लिए मजबूर करता है। तो स्वामी जी उस मीत को तोड़ने के खिलाफ थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। समाज में धर्म के नाम पर चलने वाली वो सारी खराब चीजों को, अंधविश्वासों को, वो दुकानदारी को खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे। और जो शास्त्रों में लिखा है, अगेन आई एम सेइंग, स्वामी जी का कोई पर्पस नहीं था कि कोई रिफॉर्मिस्टिक और वो बनाना, अपने आप को सुधार। शास्त्र में लिखा है तुम नहीं मानते हो, मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखा रहा हूं ये तुम्हारे शास्त्र में है। तुम जो जानते हो, जिसको शास्त्र मानते हो, या जो तुम्हें बताया जाता है, वो कितना तुम्हें झूठ बोला जाता है, तुझे कितना इल्यूशन में रखा जाता है। He exhausted the nation to accept social reforms like abolition of untouchability, sati, dowry. आज भी dowry है जी। पढ़े लिखे लोग, highly educated, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं वगैरह। इवन भारत से बाहर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएस, ईयू में बहुत सफल हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, सोसाइटी में उनका खूब नाम है, पर जब शादी करते हैं तो दहेज मांगते हैं। क्यों? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, पैसा खर्च किया, पैसा दो। पत्नी को लाते हैं पैसे लेकर के, माँ बाप बेचते हैं अपनी बेटियों को, दहेज देना मतलब बेचना। और वो लालची आदमी अपनी बीवी को पैसे लेकर के खरीदता है, बाद में बोलता है ये मेरी बीवी है। शर्म आना चाहिए। दुनिया को ठगते हो, जिस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिताओगे, जिसको पब्लिक को दिखाते फिरोगे कि ये मेरा बिलव्ड वाइफ है, उसको तू पैसा देकर लाए हो, शर्म की बात है। पर ये व्हाइट कलर पढ़े लिखे लोग भी ये काम करते हैं। ये आपको किसी मंदिर में कोई नहीं बताएगा, देवियों सज्जनों, कोई साधु पंडित आचार्य नहीं बताएगा, ये सिर्फ स्वामी दयानंद जी ने बताया और उसको मानने वाले अरे समाज में ही बताएंगे। आपको बुरा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, तो लगेगा। ये हमारी ट्रेडिशन रहा है और स्वामी जी ने सीख दी है। अकेले स्वामी जी नहीं मारे गए, उसके बाद सूरधानंद जी आए वो भी मारे गए, उसके बाद लेख राम आए वो भी मारे गए। हमारे विद्वानों को भी झेलना पड़ता है, पब्लिक की गालियां सुननी पड़ती है, बहुत उत्पटांग बातें सुननी पड़ती है, हमें भी झेलनी पड़ती है। पर जिसके दिल में दर्द होना, वो आर्य समाजी है नहीं है, इट डजंट मैटर, तो स्वामी जी को मानता है कि नहीं मानता। अगर उसके अंदर ह्यूमैनिटी होती है ना, अगर वो ह्यूमैनिटी को वो एहसास करता है, ही विल रिएक्ट, वो करेगा ही करेगा। अगर आप पूरी तरह पैसे के खोर हो चुके हैं, पूरी तरह सोशल रिकॉग्नाइजेशन को ही सब कुछ मानते हैं, तो आप कंप्रोमाइज करेंगे। ये शायद भारत के हिंदू हिस्ट्री में, मॉडर्न हिंदू हिस्ट्री में पहला व्यक्ति सन्यासी था जो पैदा इसी ब्राह्मण भी था जी, बाद में सन्यासी भी बना, जिसने ये हिम्मत किया ये बोलने के लिए, और उसके मानने वालों के लिए वो सीख देकर गया कि तुम भी ऐसे ही करना, नो कॉम्प्रोमाइज, किसी को पसंद आए ना आए, वो बोलो जो सच है। He advocated the equal rights and respects to women and advocated the education of girl child like the, आप आजकल आप अमेरिका में रहते हैं, आपको लगेगा ओ तो ठीक है, तो यूनिवर्सल चीजें हैं। पूछिए आप अपने दादा परदादाओं को पूछिए, उस दिन एक लड़की को पढ़ाने के लिए हिम्मत करना कितना मुश्किल काम है, सोशल बॉयकॉट,
सोसाइटी में आपको सब बुरे नजर से दिखेंगे, लड़की को पढ़ा रहा है, बाहर भेजता है, वो गाना गाती है, गालियां देते थे, पर लोग आए।
जो चीजें आपको आज बड़ा नॉर्मल लगता है, उस समय ये बड़ी बात थी।
स्वामी जी को इस पर आवाज उठानी होती थी। रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम,
जो गुरुकुल सिस्टम हजार साल से भारत की एजुकेशन सिस्टम का स्पाइन था,
रीढ़ की हड्डी थी, वो टूट चुकी थी, उसको रिवाइव किया। आज भी भारत में हजारों गुरुकुल चलते हैं उसी पैटर्न में। गुरुकुल मतलब गुरु और शिष्य एक जगह रहेंगे, एक ही तरह का खाना खाएंगे, एक ही तरह की दिनचर्या करेंगे। सुबह 5 बजे से 4 बजे से उठ के योगा से लेकर हवन से लेकर पढ़ाई लिखाई की तरीका वही रहेगी। आज भी होती है। कन्याओं का अपना गुरुकुल है, लड़कों का अपना गुरुकुल है।
सिर्फ इतना नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन को भी भारत में आर्य समाज ने रिवाइव किया
डीएवी मूवमेंट से, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। एंग्लो भी होना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन भी होना चाहिए, साथ में वैदिक भी होना चाहिए, इंडियन कल्चर भी होना चाहिए।
ये जो कंसेप्ट है वो भारत में पहली बार आर्य समाज लाया।
आज जो डीएवी मूवमेंट है, डीएवी स्कूलों की, भारत में हजार शायद भारत वर्ष में सरकारी स्कूलों के बाद जो सेकेंड नंबर में अगर कोई स्कूल का जाल नेटवर्क है वो डीएवी मूवमेंट का है।
आजकल उसकी वैल्यू इतना नहीं होगा क्योंकि सारी देश एजुकेटेड होने जा रहा है, एजुकेशन के बारे अवेयरनेस बहुत है। प्राइवेट स्कूलों हजार हजार संख्या में, कल्पना करिए 100-150 साल पहले की, तब आपको समझ में आएगा।
कंक्लूजन में मैं आता हूं। वंस एड्रेसिंग ए ह्यूज गैदरिंग, दयानंद थंडर्ड, योर एंसेस्टर्स वेयर नॉट अनसिविलाइज्ड मेन लिविंग इन फॉरेस्ट, जैसे हमें सिखाया जाता है, जैसे मोस्टली हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता है। सो ये जो शब्द यूज करते हैं पोंगापंथी,
दे वर ग्रेट मैन हु एनलाइटेंड द वर्ल्ड।
आपको पता करनी है, पढ़िए इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री, दुनिया को हमने क्या क्या दिया है, जीरो से लेकर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्लास्टिक सर्जरी से लेकर हजारों चीजें हैं,
वो आपके पूर्वजों ने दिया है।
और आप जो हम जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, मॉडर्न एजुकेटेड लोग हैं, जो दिन में 4 बार भारत को गालियां देते हैं, अपने पूर्वजों को गालियां देते हैं, दुनिया को क्या दिया।
देखिए हिस्ट्री इंडिया की, पिछले 1000 साल की इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, जीरो। भारत को दुनिया का, दुनिया को प्रति भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, जो सैकड़ों कंट्रीब्यूशन है, वो सब कुछ है जो 3000 साल, 4000 साल, 2500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने दिया था। उसके बाद कुछ नहीं, वो लिंक टूट गया।
इसलिए स्वामी जी ने कहा, योर हिस्ट्री इज नॉट ए बंडल ऑफ डिफीट्स। जैसे कि मोगल के समय, ब्रिटिश के समय आपको पढ़ाया गया, उससे पहले का भी पढ़ो।
इट इज द एवोलॉजी द कॉन्करर्स ऑफ द वर्ल्ड।
हम इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया तक फैले हुए थे,
लोगों को काट मार के नहीं,
अपनी इंटेलेक्चुअल वार से।
हमारे ज्ञानी, बुद्धिजीवी, ऋषि लोग कहां तक फैले थे,
ईस्ट यूरोप तक, अरब तक, कंबोडिया, थाईलैंड तक हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार था।
तो हम कोई डिफीटेड प्राणी नहीं है जैसे मोगल के समय में हम हुए। योर वैदिक स्क्रिप्चर्स आर नॉट द सॉन्ग्स ऑफ काउहर्ड्स,
दे आर द इमोर्टल ट्रूथ विच शेप्ड माइटी सोल्स लाइक श्री राम एंड श्री कृष्ण। जिन लोगों को ये बड़ी गलत फहमी है कि सब कुछ यहां राम और कृष्ण के बाद हुआ, सब सेलिब्रेशन को राम के साथ कृष्ण के साथ जोड़,
राम कृष्ण वो संस्कृति के प्रोडक्शन है।
कृष्ण भी गुरुकुल में गए, कौन है उनके गुरु, सांदीपनी। महाभारत पढ़ो,
वो भी गुरुकुल में उतने ही 14 साल 15 साल 18 साल जैसे एक नॉर्मल इंसान गुरुकुल में पढ़ता है उतने ही साल पढ़े पढ़ के आए। द्रुपद भी थे, द्रोण भी थे, सुदामा था, कृष्ण थे, राम भी गुरुकुलों में पढ़ के आए। तो स्वामी जी कहते हैं कि वो तुम्हारी संस्कृति धर्म वो महान धर्म संस्कृति है जहां हमने राम कृष्ण जैसा जगत विजयी लोगों को दिया, तलवारों से नहीं, विचारों से, ज्ञान से, व्यवहार से, आचरण से। हम बोलते हैं ना कृष्णम वंदे जगत गुरु, समझ में नहीं आता है तो गीता पढ़ो, समझ में आएगा कि कैसे जगत गुरु है कृष्ण, क्या विचार है, 5000 साल पहले का विचार देखिए। स्वामी जी कहते हैं अवेक राइज बी प्राउड ऑफ योर ग्लोरियस हिस्ट्री, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू मोल्ड द प्रेजेंट, शेम अपन दैट एजुकेशन व्हिच फील्स यू द कंटेम्प्ट फॉर योर एंसेस्टर्स। जो ब्रिटिश एजुकेशन से पढ़े हुए हम लोग हर बात पर अपने पूर्वजों को निंदा करने की नहीं चुकते हैं। He inspired the nation to aspire Swarajya, self-governance, nationalism. मैं अगेन में कहूं, स्वामी जी ने कभी नहीं दावा किया ये कोई मेरा विचार है, ये स्वराज्य भी वो कहते हैं, ये कोई नया विचार नहीं है। ऋग्वेद के सूक्त भरे पड़े हैं स्वराज्य पर, अर्चन ननो स्वराज्यम। मैं उस स्वराज्य को, सेल्फ गवर्नेंस को वर्शिप करता हूं, पूजता हूं, ऐसे सुप्त के सुप्त भरे पड़े। ये कोई वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है कि हमने जो उससे सीख लिया। और आपको पता है कि नहीं है, प्री गांधी पीरियड के जो फ्रीडम स्ट्रगल में मोस्ट ऑफ जो नॉर्थ इंडियन फाइट फ्रीडम फाइटर थे, या तो वो डायरेक्टली आर्य समाजी थे या आर्य समाज से इन्फ्लुएंस थे। प्री गांधी फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी लीडर थे, लाला लाजपत राय हो, महात्मा हंसराज हो, श्याम जी कृष्ण वर्मा जिनका आज अभी मोदी जी जाकर के उनके वो आश लेकर के आए, मैडम कैमा, पंडित गुरुदत्त, सुखदेव, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढिंगरा, मोस्ट ऑफ जितने शहीदी रिवोल्यूशनरी माइंडसेट के लोग थे, वो रिवोल्यूशनरी माइंडसेट उनको आर्य समाज से प्रेरणा मिली थी। He discouraged dogmas and symbolism that run contrary to common sense and logic. स्वामी जी ने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात दी लोगों को, बहुत छोटी सी बात, वो थी कि तुम किसी के बारे में जो डिसीजन लेते हो, खास करके तुम्हारा डिसीजन मेकिंग जब रिलीजियन के मामले में होता है, उस समय तुम अपने बहुत सारे चीजों को यूज नहीं करते हो। वो क्या है कि अपनी कॉमन सेंस को, अपनी रीजनिंग पावर को यूज करना सीखो, जैसे तुम अपने लाइफ में हर चीज में यूज करते हो, उसको अपने धर्म में भी यूज करना सीखो। अगेन आई एम सेम, ये कोई स्वामी जी का अपना विचार नहीं था, वो वही मनुस्मृति, वही तुम्हारे शास्त्रों के उदाहरण देते हैं, वो मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन। धर्म के चार खंभे होते हैं, इन चार खंभों पर तुम्हारा धर्म टिका होना चाहिए। पहला है श्रुति, वेद आदि शास्त्र जो कहते हैं वो तुम्हारा धर्म हो। अगर उसमें तुम्हारा ज्यादा प्रवेश नहीं है, वहां पढ़े लिखे नहीं हो, जा नहीं सकते हो, तो स्मृति, जो वेद के अनुसार जो शास्त्र लिखे गए, धर्म शास्त्र वगैरह, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह वगैरह, महाभारत रामायण जो कस्टोरियां है, जो वेद के अनुकूल बात करते हैं, वो तुम्हारा धर्म को समझने का रास्ता होना चाहिए। लेकिन मैं कहूं ये कोई स्वामी जी का वचन नहीं, ये मनुस्मृति का वचन है। स्मृति स्मृति सदाचार, और उसमें भी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम्हारे आसपास के जो महान आत्माएं हैं, महान लोग हैं, उनके आचरणों को देखो, उनके वो क्या बोलते हैं नहीं, उनके आचरणों को देखो। उन्होंने जब भी कोई ऐसी डिलेमा आई लाइफ में, कोई प्रॉब्लम्स आया, उस समय उनका आचरण कैसा था, राम के आचरण देखो, कृष्ण के आचरण देखो, समझ में आएगा उन्होंने क्या डिसीजन लिया। ऐसा ही व्यवहार करो, वो धर्म होगा। अगर ये तीनों चीजों में तुम्हें समझ में नहीं आता है, स्वस्य च प्रियम आत्मना, अपनी अंदर की आवाज को सुनो, बड़ी दैट अंदर की आवाज, इनर वॉइस, दैट्स योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है, कुछ करने पर अगर आपको अंदर से लगता है कि आई एम डूइंग गुड, आपको गुड फीलिंग होती है, दैट मीन्स यू आर इन गुड ट्रैक। अगर के अंदर से आपको गिल्ट फीलिंग होती है, आप गलत रास्ते पर हो, आप इन्फ्लुएंस्ड हो, आप करने के लिए मजबूर हो सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप गड़बड़ाओ। स्वामी जी कहते हैं धर्म के मामले में भी ये अपनाओ। जब आप देखते हो कोई बीमार महिला बीमार है, नवरात्र में उपवास कर रही है, या वो अभी करवा चौथ गया उपवास कर रही है पति की लंबी आयु के लिए, बीमार है, आपको अंदर पहली फीलिंग क्या आती है? वो बीमार है, उसको अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर हाँ नहीं 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 कहीं मैं पाप तो नहीं सोच रहा हूं, ये नहीं ये पाप होगा नहीं, वो करना चाहिए। दैट्स योर सेकेंड फीलिंग, दैट फीलिंग इज इन्फ्लुएंस्ड फीलिंग। आपकी जो अंदर की आवाज थी वो धर्म था कि बीमार है उसको अपना ख्याल रखना चाहिए, उपवास करने की जरूरत नहीं, वो धर्म था, बाकी तो इन्फ्लुएंस्ड हुआ। स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्र ये उपदेश करते, इसको सीखो समझो, कॉमन सेंस यूज करना सीखो। स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, ही हु आफ्टर केयरफुल थिंकिंग इज एवर रेडी टू एक्सेप्ट ट्रूथ एंड रिजेक्ट फॉल्सहुड, हु काउंट्स द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एज ही डज दैट ऑफ हिज ओन सेल्फ, ही माई कॉल जस्ट। वही आदमी सच्चा है, न्यायशील है, जो दूसरों से वही एक्सपेक्ट करता है जो खुद दूसरों के साथ करता है। वो जो अपने लिए एक्सपेक्ट करता है वो दूसरों के लिए वैसा ही करता है। अगेन ये स्वामी जी का अपना विचार नहीं, स्वामी जी कहते हैं मेरा कोई विचार नहीं, वेद से लेकर जैमिनी तक सारे शास्त्रों में जो विचार है मैं आपको अपनी भाषा में आपके सामने रखता हूं। यजुर्वेद ईशावास्य उपनिषद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, जो खुद में अपने को देखता है सब, जो खुद में सबको देखता है सब में अपने को देखता है वही ज्ञानी है, वही समझदार है। देवियों सज्जनों, इस तरह स्वामी जी सत्य को साथ देने के लिए, हमारे धर्म को, सही धर्म को हमारे सामने रखने के लिए संघर्ष किया। और नेचुरली जब आप बहुत सत्य बात करते हैं, खास करके धर्म के मामले में, क्योंकि धर्म बहुत इजीली आपको फैनेटिक बना देता है, रिलीजन आपको बना देता है। जब आप ब्लाइंडली कोई काम करते हैं, बिना समझे धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो रिलीजन बन जाता है। और रिलीजन बड़ा खतरनाक होता है देवियों सज्जनों, क्योंकि वो आपके समझ पर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी सुपरस्टिशन पर डिपेंड करता है, वो आपकी ब्लाइंड फेथ पर डिपेंड करता है, वो आपके उठपटांग ट्रेडिशन पर डिपेंड करता है, वो आदमी को फैनेटिक बनाता है। जो असली धार्मिक व्यक्ति है उसके अंदर और बाहर तो शुद्धता झलकेगी, उसके अंदर और बाहर दया करुणा प्रेम झलकेगा। वो कितना ईश्वर को पाएगा वो अलग बात है, पर इतना अच्छा इंसान बनेगा अब कल्पना नहीं कर सकते। पर आप कहें कि मैं रिलीजियस हूं पर अच्छा इंसान नहीं हूं, तो आप गलत ट्रैक पर हैं। आप दवाई के नाम पर अफीम खा रहे हैं, ठीक नहीं होने वाले, बीमार और पड़ने वाले हैं। स्वामी जी लिखते हैं लास्ट में, आई डू नॉट एंटरटेन द लीस्ट आइडिया ऑफ फाउंडिंग ए न्यू सेक्ट रिलीजन और एनीथिंग, माय सोल एम इज टू बिलीव इन ट्रूथ एंड हेल्प अदर्स टू बिलीव इन इट, टू रिजेक्ट फॉल्सहुड एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। देवियों सज्जनों, आज के इस पवित्र दीपावली के अवसर पर हमने थोड़ी बहुत दीपावली की चर्चा की। आर्य समाज अगले 5 नवंबर को शनिवार को दिवाली बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही है, शाम को 5 बजे से 8-9 बजे तक, अभी आपको अनाउंसमेंट होगा, उसमें हवन प्रवचन बच्चों का कुछ अपने मॉन्टेसरी और संस्कृत स्कूल के बच्चों के भी कुछ कार्यक्रम होंगे, और उसके बाद बाहर आप उत्सव करिएगा, मस्ती करिएगा, आपके लिए मेला लगेगी, खाइए पिए घूमिए पटाखे फोड़िए दिया जलाइए आनंद लीजिएगा। और मत भूलिए कि आज के दिन स्वामी दयानंद जी का देहांत हुआ था, उनको मारा गया था जहर दे करके, आज के दिन ही उनका देहांत हुआ था। हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के और हमारी भलाई के लिए, उन निर्वाण को भी मत भूलिएगा। इसी के साथ सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। दीपावली का एक पवित्र सुंदर मंत्र है जो दीपावली को आइडेंटिफाई करता है कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें, झूठ से सच की ओर चलें और मृत्यु से अमृत की ओर चलें। मिलकर एक बार बोलिए, ओम असतो मा सत्कामाया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यर्मा अमृतं गमय।